अध्याय 70 दाऊद का भाषण। यह अध्याय दूसरा शमूएल 5 आयत 6 से 25, 6, 7, 9, 10 पर आधारित है। जैसे ही दाऊद को इज़राइल के सिंहासन पर विराजमान किया गया, वो अपने राज्य की राजधानी के लिए एक अधिक उचित स्थान ढूंढने लगा। हेब्रोन से 20 मील दूर राज्य के भावी महानगर के लिए एक स्थान चुना गया। यहोशू के द्वारा यर्दन पर से इज़राइली सेना को ले जाने से पूर्व इसका नाम सालेम था। इस स्थान के निकट अब्राहम ने परमेश्वर के प्रति अपनी स्वामी भक्ति का प्रमाण दिया था। दाऊद के अभिषेक से 800 वर्ष पूर्व ये परमेश्वर के याजक मलिकिसिदक का घर था। ये देश के मध्य से और ऊंचाई पर था और पहाड़ों के वातावरण द्वारा सुरक्षित था। बिन्यामीन और यहूदा के बीच की सीमा पर होते हुए ये एप्रैम के समीप था और अन्य गोत्र यहां आसानी से पहुंच सकते थे। इस स्थान को सुरक्षित करने के लिए इब्रियों के लिए कनानियों के उत्तरजीवियों को निर्वासित करना आवश्यक था। कनानी सियोन और मोरा पर्वतों पर एक सुरक्षित स्थान में स्थित थे। इस गढ़ को यबूस कहा जाता था और इसके निवासी यबूसी कहलाते थे। सदियों से यबूस को अजय माना जाता था, लेकिन योआब के नेतृत्व में इब्रियों ने इसका घेराव कर इसे ले लिया था। योआब को इसी साहस के लिए पारितोषिक के रूप में इज़राइल की सेनाओं का प्रधान सेनापति बनाया गया था। यबूस अब राष्ट्रीय राजधानी बन गया था और उसके मूर्ति पूजा से जुड़े नाम को बदलकर यरूशलेम रखा गया। भूमध्य सागर पर स्थित सोर के समृद्ध नगर का राजा होशम ने इज़राइल के राजा से संधि की और यरूशलेम में महल के निर्माण के कार्य में दाऊद की सहायता की। सोर से राजदूतों को भेजा गया और उनके साथ राजमिस्त्री और कारीगर और कीमती काठ, देवदार के वृक्ष और अन्य बहुमूल्य सामग्री भी भेजी गई। दाऊद के शासनकाल में इज़राइल की बढ़ती हुई ताकत, यबूस के गढ़ का अधिग्रहण और सोर के राजा हीराम के साथ संधि ने पलिश्तियों की शत्रुता को उकसाया और उन्होंने सशक्त सेना के साथ देश पर आक्रमण किया। वे रपाइम नामक तराई में फैल गए, जो यरूशलेम से कुछ ही दूरी पर है। दाऊद और उसके साथी सियोन के गढ़ में चले गए और उन्होंने ईश्वरीय निर्देश की प्रतीक्षा की। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में दे देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय ही पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। दाऊद ने शत्रु पर तत्काल चढ़ाई की, उन्हें पराजित किया और उनको नष्ट कर दिया और उनसे उनकी मूर्तियां, जो वे अपनी विजय निश्चित करने के लिए लाए थे, ले ली। अपनी पराजय के अपमान से अत्यंत क्रोधित होकर पलिश्तियों ने एक विशाल सेना एकत्रित की और दूसरी बार चढ़ाई करके वे रपाइम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा और उस महान मैं हूं अर्थात परमेश्वर ने इज़राइल की सेनाओं का निर्देशन स्वयं किया। परमेश्वर ने दाऊद को निर्देश दिया, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर धावा बोल। और जब तूत वृक्षों की फनगियों में से सेना के चलन की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब फुर्ती करना, क्योंकि फिर यहोवा पलिश्तियों की सेना को मारने तेरे आगे आगे जाएगा। यदि शाऊल की तरह दाऊद ने अपना ही तरीका अपनाया होता तो वह सफल नहीं होता, लेकिन वह परमेश्वर की आज्ञानुसार गेबा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियों को मारता गया। पहला इतिहास 14 आयत 16-17। चूंकि अब दाऊद सिंहासन पर दृढ़ता से स्थापित हो गया था और विदेशी शत्रुओं की घुसपैठ से स्वतंत्र था, वह अपने अभिलाषित उद्देश्य की पूर्ति की ओर मुड़ा, परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम लेकर आना। कई वर्षों से संदूक यहां से 9 मील दूर किर्यत्यारीम में रहा था, लेकिन यह उचित था कि पवित्र उपस्थिति के प्रतीक से राष्ट्र की राजधानी की शोभा बढ़ाई जाए। दाऊद ने इज़राइल के 30,000 प्रतिष्ठित पुरुषों को बुलाया, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि इस अवसर को परम आनंद और प्रभावशाली प्रदर्शन का दृश्य बनाया जाए। लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक इस बुलावे का प्रत्युत्तर दिया। पवित्र कार्यस्थान में कार्यरत अपने भाइयों के साथ महायाजक और प्रधान और सभी गोत्रों के सम्मानीय पुरुष किर्यत्यारीम में एकत्रित हुए। दाऊद पवित्र उत्साह से दमक रहा था। संदूक को अबीनादाब के घर से निकाला गया और उसे एक नई बैलगाड़ी में रखा गया और अबीनादाब के दो पुत्रों ने गाड़ी को हांका। इज़राइली पुरुष उसके पीछे पीछे प्रशंसा के गीत गाते और जय जयकार करते चले और उन्होंने वाद्य यंत्रों के संगीत के साथ अपनी आवाजों के सुर मिलाए। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू और झांझ बजाते रहे। इज़राइल ने विजयोल्लास का ऐसा दृश्य बहुत समय बाद देखा था। पहाड़ों और घाटियों के घुमावदार रास्तों से होता हुआ वो विशाल जनसमूह प्रसन्नता के साथ पवित्र नगर की ओर गया। लेकिन जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई और वो हिल गया। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसे उसके दोष के कारण ऐसा मारा कि वो वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। आनंद मनाती हुई भीड़ अचानक से भयभीत हो गई। दाऊद भौचक्का रह गया और अपने हृदय में उसने परमेश्वर के न्याय पर संदेह किया। वो पवित्र उपस्थिति के प्रतीक के तौर पर वाचा के संदूक का सम्मान करना चाहता था। फिर क्यों उस सुखद सुअवसर को दुख और विलाप के दृश्य में बदलने के लिए वो भयावह दंडाज्ञा भेजी गई? दाऊद को लगा कि संदूक को पास में रखना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए उसने निश्चय किया कि उसे वहीं रहने दिया जाए जहां वो था। पास ही में गतवासी ओबेदेदोन के घर में उसे रखने के लिए स्थान मिल गया। उज्जा की नियति एक सुस्पष्ट आज्ञा के उल्लंघन के लिए पवित्र दंडादेश था। मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने संदूक के परिवहन से संबंधित विशेष निर्देश दिए थे। केवल हारून के वंशज अर्थात याजक संदूक को छू सकते थे या उसे बिना आवरण के देख सकते थे। पवित्र निर्देश था, कहाती उसके उठाने के लिए आए पर किसी पवित्र वस्तु को न छुएं, कहीं ऐसे न हो वे मर जाएं। गिनती 4:15। याजकों को संदूक को ढांकना था और फिर कहातियों को उसे डंडों से उठाना था। ये डंडे संदूक के दोनों तरफ लगे कड़ों में से पिरोए हुए थे और इन्हें कभी भी हटाया नहीं जाना था। गेशोनियों और मरारियों के प्रभार में मिलाप वाले तंबू के पर्द, पट और स्तंभ थे। मूसा ने उन्हें दी गई वस्तुओं के परिवहन के लिए बैल और गाड़ियां दी, परंतु कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वे उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें। गिनती 7:9। इस प्रकार संदूक को किर्यत्यारीम से लाने में परमेश्वर के निर्देशों का प्रत्यक्ष और अक्षम्य अनादर हुआ था। दाऊद और उसकी प्रजा एक पवित्र कार्य को संपन्न करने के लिए एकत्रित हुए थे और वे उसे प्रसन्नता और स्वेच्छा से करने में व्यस्त हुए थे, लेकिन प्रभु इस विधि को स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि ये उसके निर्देशानुसार संपन्न नहीं की गई थी। पलिश्तियों ने, जिन्हें परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान नहीं था, इज़राइल लौटते समय संदूक को गाड़ी पर रखा था और परमेश्वर ने उनके द्वारा किए गए प्रयास को स्वीकार किया। लेकिन इज़राइलियों के हाथों में इन विषयों में परमेश्वर की इच्छा का स्पष्ट विवरण था और इन निर्देशों के प्रति उनकी उपेक्षा परमेश्वर का निरादर करना था। उज्जा परिकल्पना के लिए अधिक दोषी था। परमेश्वर की व्यवस्था के उल्लंघन ने उसकी पवित्रता के आभास को उसमें कम कर दिया था और अस्वीकृति पापों को अपने ऊपर लिए परमेश्वर द्वारा निषिद्ध होने के बावजूद उसने परमेश्वर की उपस्थिति के प्रतीक को छूने का दुस्साहस किया। परमेश्वर ना तो आंशिक आज्ञाकारिता और ना ही उसके नियमों के प्रति उदासीनता को स्वीकार करता है। उज्जा पर दंडाज्ञा भेजने के द्वारा वो समस्त इज़राइल पर उसके नियमों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता को समझाना चाहता था। इस प्रकार उस एक मनुष्य की मृत्यु लोगों को पश्चाताप का मार्ग दिखाकर हजारों को दंडादेश देने की आवश्यकता को रोक सकती थी। ये सोचकर कि उसका अपना मन परमेश्वर के प्रति पूर्णतया साफ नहीं था, उज्जा पर पड़ी मार को देखकर दाऊद को संदूक का भय था कि कहीं उसका कोई पाप उस पर दंडाज्ञा न ले आए। लेकिन ओबेदेदोम ने, जो प्रसन्नता में भी कांप रहा था, पवित्र प्रतीक का निष्ठावानों के लिए परमेश्वर की कृपा दृष्टि की प्रतिज्ञा के तौर पर स्वागत किया। समस्त इज़राइल का ध्यान अब गतवासी और उसके घराने की ओर था। सब देख रहे थे कि उनके साथ सब कुछ कैसा रहेगा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। दाऊद पर परमेश्वर की फटकार ने अपना कार्य संपन्न किया। उसे एहसास कराया गया कि उसने पहले से ही संपूर्ण आज्ञाकारिता की आवश्यकता और परमेश्वर की व्यवस्था की पवित्रता को नहीं समझा था। ओबेदेदोम के घराने पर कृपा दृष्टि दिखाने से दाऊद ने फिर से यह आशा की कि संदूक उसके और उसकी प्रजा के लिए आशीष का कारण होगी। 3 माह पश्चात उसने संदूक को हटाने का एक और प्रयास करने का संकल्प किया और इस बार उसने परमेश्वर के निर्देशों का सूक्ष्मता से पालन करने पर पूरा ध्यान दिया। राष्ट्र के माननीय पुरुषों को बुलाया गया और गतवासी के निवास स्थान के चारों ओर एक विशाल जनसमूह एकत्रित हो गया। संदूक को श्रद्धापूर्वक ईश्वर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के कंधों पर रखा गया। सब लोग पंक्तिबद्ध हुए और कांपते हृदयों के साथ विशाल जनमंडली आगे बढ़ी। 6 कदम चलने पर तुरही के स्वर ने रुकने का संकेत दिया। दाऊद के निर्देश द्वारा बेल और पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि चढ़ाया था। कंपन और भय का स्थान अब आनंद ने ले लिया। राजा ने अपने राजसी वस्त्र एक तरफ रखकर सन के वस्त्र का एपोद, जो याजकों द्वारा पहना जाता है, धारण किया। ऐसा करने से वह यह नहीं जता रहा था कि उसने याजकीय कार्य ग्रहण कर लिए थे, क्योंकि एपोद कभी कभी याजकों के अलावा अन्य लोग भी पहन लेते थे। लेकिन इस पवित्र विधि में उसने परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रजा की बराबरी में स्थान लिया। उस दिन यहोवा की महिमा होनी थी। परमेश्वर को श्रद्धा का एकमात्र लक्ष्य होना था। फिर से लंबा कारवां गतिमान हुआ और वीणा और सारंगी, तुरही और झांझ का संगीत हवा में तैरने लगा और कई सुरों के साथ मिल गया, और दाऊद यहोवा के सम्मुख नाचता रहा। परमेश्वर के सम्मुख श्रद्धापूर्ण आनंद में दाऊद के नाचने के प्रसंग को आमोद प्रमोद प्रिय लोग प्रचलित आधुनिक नृत्य को न्यायोचित ठहराने के लिए उल्लेख करते हैं, लेकिन ऐसे तर्क के लिए कोई आधार नहीं है। आज के समय में नृत्य मध्य रात्रि के मनोरंजन और मौज मस्ती से संबद्ध है। स्वास्थ्य और नीति विद्या को आमोद प्रमोद पर बलि चढ़ा दिया गया है। नृत्य प्रेमियों के लिए परमेश्वर श्रद्धायुक्त भय और विचार का पात्र नहीं होता। उनकी सभाओं में प्रार्थना या प्रशंसा के गीत अनुचित प्रतीत होंगे। ये परख निर्णायक होनी चाहिए। वे मनोरंजन जिनमें पवित्र वस्तुओं के लिए प्रेम को निर्बल करने की और परमेश्वर के कार्यों को करने में हमारे आनंद को कम करने की प्रवृत्ति होती है, मसीही लोगों को नहीं अपनाने चाहिए। संदूक को स्थानांतरित करने पर परमेश्वर के लिए सहर्ष प्रशंसा में नाच गाने और आधुनिक नृत्य में थोड़ी सी भी समानता नहीं है। एक का लक्ष्य था परमेश्वर का स्मरण और उसके पवित्र नाम की प्रशंसा, लेकिन दूसरा अर्थात आधुनिक नृत्य मनुष्य को परमेश्वर को भुलाने और उसका निरादर करवाने का शैतान का माध्यम है। विजयोल्लास से परिपूर्ण जनसमूह अपने अदृश्य राजा के पवित्र प्रतीक के पीछे पीछे राजधानी के निकट पहुंचा। गीत की तेज आवाज ने शहरपनाहों के प्रहरियों को संकेत दिया कि पवित्र नगर के फाटक खोल दिए जाएं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। गायक मंडली और साज बजाने वालों ने कहा, वह प्रतापी राजा कौन है? दूसरे समूह ने उत्तर दिया, परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। फिर सैकड़ों आवाजों ने मिलकर विजय गान गाया, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। फिर से वह सुखदाई प्रश्न सुनाई दिया, वह प्रतापी राजा कौन है? और विशाल जनसमूह की बहुत से जल की घरघराहट के समान आवाज में उत्साहपूर्ण उत्तर सुनाई दिया, सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। भजन संहिता 24:7-10। फिर फाटकों को पूरा खोल दिया गया, जनसमूह ने प्रवेश किया और अत्यंत श्रद्धा के साथ संदूक को उस तंबू में रख दिया गया जिसे उसकी अगवानी के लिए खड़ा किया गया था। पवित्र तंबू के सामने बलि की वेदी खड़ी की गई, होम बलि और मेल बलि के धुएं, धूप के धुएं के साथ इज़राइल के निवेदन और प्रशंसा गीत स्वर्ग को समर्पित किए गए। धर्मक्रिया संपन्न होने के पश्चात राजा ने स्वयं प्रजा को आशीर्वाद दिया। फिर अपनी राजसी बहुतायत में से उसने उनके अल्पाहार के लिए भोजन और दाखरस बंटवाया। इस धर्मक्रिया में सभी गोत्रों का प्रतिनिधित्व हुआ था और ये दाऊद के शासनकाल का अब तक की सबसे पवित्र घटना का समारोह रहा था। शाऊल पर पवित्र प्रेरणा का आत्मा आकर ठहरा था और अब जब डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरणें पवित्र तंबू को पवित्र प्रकाश से स्नान करा रही थीं, उसके हृदय ने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उसकी उपस्थिति का प्रतीक इज़राइल के सिंहासन के इतना समीप था। इस प्रकार विचारमय होकर दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए अपने महल की ओर मुड़ा, लेकिन कोई एक थी जिसने इस आनंदमय दृश्य को दाऊद के हृदय को प्रभावित करने वाली भावना के बिल्कुल विपरीत भावना से देखा था। जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते और नाचते हुए देखा। उसने उसे अपने हृदय में तुच्छ समझा। अत्यंत अप्रसन्नता के कारण वो दाऊद के महल में वापसी तक प्रतीक्षा न कर सकी, वरन उससे मिलने के लिए बाहर गई और दाऊद के भद्र अभिवादन के उत्तर में उसने कटु शब्दों की बौछार कर दी। उसके कथनों की व्यंगोक्ति तीव्र और कटाक्ष करने वाली थी। कितना तेजस्वी था आज इज़राइल का राजा, जिसने अपनी प्रजा की दासियों के सामने अपने वस्त्र उतार दिए, जैसे कोई मूर्ख मनुष्य बिना लज्जा के स्वयं को निर्वस्त्र करता है। दाऊद को लगा कि मीकल ने परमेश्वर की धर्म किया का तिरस्कार और निरादर किया था, और उसने कठोरता पूर्वक उत्तर दिया, यहोवा, जिसे तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके लिए मैं ऐसे नाचा, और मैं यहोवा के सम्मुख ऐसे ही नाचता रहूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की है वे भी मेरा आदरमान करेंगी। दाऊद की फटकार के साथ प्रभु की झिड़की भी जुड़ गई। अपने अभिमान और उदंडता के कारण मरने के दिन तक मीकल के कोई संतान न हुई। संदूक के स्थानांतरण के उपलक्ष्य में किए गए पवित्र समारोहों का प्रजा पर गहरा प्रभाव पड़ा, और पवित्र स्थान की धर्मक्रिया में उनकी गहरी रुचि उत्पन्न हुई, और यहोवा के लिए उनका उत्साह पुनः जागृत हुआ। गीत गाने की धर्मक्रिया धार्मिक आराधना का यथाविधि भाग बन गया, और दाऊद ने न केवल मिलाप वाले तंबू की धर्मक्रिया में याजकों के उपयोग के लिए, वरन वार्षिक पर्वों पर राष्ट्रवेदी पर आने वाले यात्रियों के द्वारा गाए जाने के लिए भजन लिखे। इस तरह डाला गया प्रभाव व्यापक था, और वो राष्ट्र को मूर्ति पूजकों से स्वतंत्र कराने में प्रमाणित हुआ। पड़ोसी जनजातियां इज़राइल की समृद्धि देखकर इज़राइल के परमेश्वर, जिसने अपने लोगों के लिए इतने महान कार्य किए थे, के पक्ष में विचार करने लगे। मूसा द्वारा निर्मित पवित्र मंडप, संदूक को छोड़कर पवित्र विधि से संबंधित सभी वस्तुएं अभी गीबा में ही थीं। दाऊद इज़राइल को राज्य का धार्मिक केंद्र बनाना चाहता था। उसने स्वयं के लिए महल का निर्माण कराया था, और उसे लगा था कि ये उचित नहीं था कि परमेश्वर का संदूक एक तंबू में रहे। उसने ऐसा भव्य मंदिर के निर्माण का निश्चय किया जो कि राजा यहोवा की स्थायी उपस्थिति के रूप में दिए गए सम्मान के लिए इज़राइल के आभार की अभिव्यक्ति करता हो। उसने अपना उद्देश्य नातान भविष्यद्वक्ता को बताया और उससे प्रोत्साहक प्रत्युत्तर मिला, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जिसमें राजा के लिए संदेश था। दाऊद को परमेश्वर के लिए भवन निर्माण करने के विशेषाधिकार से वंचित किया जाना था, लेकिन उसे उसके वंशजों को और इज़राइल के राज्य को ईश्वर की कृपा दृष्टि का आश्वासन दिया गया। मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मंशा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा, और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वो अपने ही स्थान में वासी रहेगी और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसा कि वे पहले करते थे।
जैसे कि दाऊद की अभिलाषा थी कि वह परमेश्वर के लिए एक घर बनाए, ये प्रतिज्ञा दी गई। यहोवा तुझे ये भी बताता है कि वो तेरा घर बनाए रखेगा। मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। दाऊद को मंदिर बनाने की अनुमति न मिलने के कारण घोषित किया गया, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा
जो शांति प्रिय पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा, शांति प्रिय, और मैं उसके दिनों में इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। वही तेरे नाम का भवन बनाएगा। पहला इतिहास 22 आयत 8 से 10। यद्यपि उसके हार्दिक उद्देश्य से उसे वंचित कर दिया गया था, दाऊद ने संदेश को धन्यवाद सहित ग्रहण किया। हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं? मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है जो तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है? तो भी हे प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, लेकिन तूने अपने दास के घराने के विषय में आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है और फिर अपने परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को दोहराया। दाऊद जानता था जिस काम को करने का उसके मन में प्रयोजन था वो उसकी सरकार के लिए गर्व की बात होती और उसके नाम को भी सम्मान मिलता, परंतु वो अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा के आगे समर्पित करने को तैयार था। ऐसे आभारयुक्त समर्पण की अभिव्यक्ति मसीही लोगों में भी देखने को मिलती है। कितनी बार आयु के कारण दुर्बल होने के बाद भी अपने हृदय में ठाने हुए किसी महान कार्य को संपन्न करने की आशा को थामे रहते हैं, जबकि वे उस कार्य को करने के लिए अयोग्य होते हैं। परमेश्वर उनसे बात करता है जैसे उसका भविष्यद्वक्ता दाऊद से करता था, और बताता है कि जिस कार्य के लिए वे इतने अभिलाषी हैं वो उनके सुपुर्द नहीं किया गया है। ये उनका दायित्व है कि उस कार्य को संपन्न करने के लिए दूसरों के लिए मार्ग तैयार करें, लेकिन पवित्र निर्देश के आगे धन्यवाद के साथ समर्पण करने के बजाय वे ऐसे मैदान छोड़ देते हैं मानो उनका तिरस्कार किया गया हो और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया हो, और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यदि वे इस कार्य को जिसको करने की उनकी हार्दिक इच्छा थी नहीं कर पाए तो वे कुछ भी नहीं कर सकते। कई लोग उन उत्तरदायित्वों को किसी न किसी तरह पकड़े रहते हैं जिनका वहन करने में वे असमर्थ हैं, और व्यर्थ में उस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करते हैं जिसके लिए वे अयोग्य है, जबकि वो जो वे कर सकते हैं उपेक्षित पड़ा रहता है, और उनकी ओर से सहयोग के अभाव में अधिक महत्वपूर्ण कार्य या तो बाधित होता है या असफल हो जाता है। योनातन के साथ अपनी वाचा में दाऊद ने प्रतिज्ञा की थी कि जब उसे अपने शत्रुओं की ओर से शांति मिल जाएगी तब वो शाऊल के घराने पर कृपा करेगा। अपनी समृद्धि के समय में अपनी वाचा को याद रखते हुए राजा ने पूछताछ की, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? उसे योनातन का पुत्र मपीबोशेत बताया गया जो बचपन से ही लंगड़ा था। यज्रेल में पलिश्तियों द्वारा शाऊल की पराजय के समय बालक मपीबोशेत की दाई ने उसे लेकर भागने के प्रयास में उसे गिरा दिया और वो जीवन भर के लिए अपंग हो गया। दाऊद ने नौजवान को अपने दरबार में बुलाया और उस पर कृपा दिखाते हुए उसका स्वागत किया। उसने शाऊल की निजी संपत्ति उसको लौटा दी जिससे वो अपने घराने का भरण पोषण कर सके, लेकिन योनातन के पुत्र को प्रतिदिन राजा की मेज पर उसका अतिथि बनके भोजन करना था। दाऊद के शत्रुओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार मपीबोशेत में कई वर्षों से पूर्व धारणा का संचार किया गया था कि दाऊद अनाधिकार ग्राही था, लेकिन दाऊद द्वारा उसके उदार और विनयपूर्ण स्वागत ने और उसकी निरंतर दयालुता ने नौजवान का हृदय जीत लिया और उसके दाऊद के साथ संबंध घनिष्ठ हो गए, और पिता योनातन की तरह उसे लगा कि उसकी और परमेश्वर द्वारा चुने हुए राजा की रुचि में समानता थी। इज़राइल के सिंहासन पर दाऊद के स्थापित होने के पश्चात राज्य में लंबे समय तक शांति बनी रही। राज्य की एकता और शक्ति को देखते हुए आसपास की जनजातियों ने खुलकर शत्रुता दिखाना उचित नहीं समझा। अपने राज्य के पुनः निर्माण और संगठन में व्यस्त होते हुए आक्रामक युद्ध से संभल कर रहा। अंत में उसने पलिश्तियों और मुआबियों पर अर्थात इज़राइल के पुराने शत्रुओं पर चढ़ाई की और दोनों को पराजित कर उन्हें सहयोगी राज्य बनाने में सफल हुआ। फिर दाऊद के साम्राज्य के विरुद्ध पड़ोसी राष्ट्रों का एक विशाल गठबंधन गठित हुआ
जिसके परिणाम स्वरूप उसके शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध और पराक्रम और उसकी सत्ता के सबसे विस्तृत राज्यारोहण घटित हुए। ये प्रतिरोधी गठबंधन, जो दाऊद की बढ़ती हुई शक्ति के प्रति ईर्ष्या के कारण उत्पन्न हुआ था, दाऊद द्वारा पूर्णतया अनुत्तेजित था। जिन परिस्थितियों के कारण इसका गठन हुआ वो ये थीं। अम्मोनियों के राजा नाहाश की मृत्यु का समाचार यरूशलेम पहुंचा। नाहाश ने दाऊद पर तब दया की थी जब वो शाऊल के कोध के कारण पलायक हो गया था। अब दाऊद ने उसके संकट के समय में उस पर की गई कृपा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए अम्मोनी राजा के पुत्र व उत्तराधिकारी हानून के पास दूतों को सांत्वना संदेश के साथ भेजा। जैसे हानून के पिता नाहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखलाऊंगा। लेकिन उसके भद्र व्यवहार को गलत समझा गया। अम्मोनी सच्चे परमेश्वर से घृणा करते थे और इसराइल के कट्टर शत्रु थे। दाऊद को नाहाश दिखाई गई दयालुता पूर्णतया इसराइल के राजा शाऊल के प्रति शत्रुता से प्रेरित थी। दाऊद के संदेश का हानून के सलाहकारों द्वारा गलत अर्थ लगाया गया। वे अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांतिदूत भेजे हैं, वो क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इस विचार से तो न भेजा कि इस नगर में जांच पड़ताल करके और इसका भेद लेकर इसको उलट दे? 50 वर्ष पहले भी हाकिमों के परामर्श से नाहाश ने याबेश गिलाद के लोगों के सम्मुख वो निर्दयी शर्त रखी थी जब वे अम्मोनियों द्वारा घेर लिए गए थे और वे शांति के लिए विनती करने गए थे। नाहाश ने उनकी सीधी आंख फोड़ देने के विशेषाधिकार की मांग की थी। अम्मोनियों को अभी भी स्पष्ट रूप से स्मरण था कि किस तरह इसराइल के राजा ने उनके षड्यंत्र को निष्फल किया था और उन लोगों को बचाया था जिन्हें वो वश में कर अपाहिज बनाना चाहते थे। अभी भी वो इसराइल के प्रति उसी घृणा से उकसाए हुए थे। जिस उदार भावना ने दाऊद के संदेश को प्रेरित किया था, वो उनके विचारों में भी नहीं थी। जब शैतान मनुष्य के मन को नियंत्रित करता है, वो ईर्ष्या और संदेह उत्पन्न करता है, जो अच्छे से अच्छे अभिप्रायों का भी गलत अर्थ निकालता है। अपने हाकिमों की बात मानकर हानून ने दाऊद के दूतों को भेदिए समझा और उन्हें अपमान और तिरस्कार से लाद दिया। अम्मोनियों को बिना किसी रोकथाम के अपने मन के पापी प्रयोजनों को पूरा करने की अनुमति दे दी गई थी, जिससे कि दाऊद पर उनका वास्तविक चरित्र प्रकट हो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि इसराइल उन धोखेबाज मूर्ति पूजकों के साथ संधि करे। प्राचीन समय में वर्तमान की तरह राजदूत का कार्यभार पवित्र माना जाता था। राष्ट्रों के सार्वदेशिक नियम के अनुसार वो व्यक्तिगत हिंसा या अपमान से सुरक्षित था। राजदूत अपने स्वामी के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा था और उसके प्रति किसी भी प्रकार का अपमान तत्पर प्रतिशोध मांगता था। अम्मोनी जानते थे कि इसराइल के किए गए अपमान का प्रतिशोध अवश्य लिया जाएगा, इसलिए उन्होंने युद्ध की तैयारी की। जब अम्मोनियों ने देखा कि वे दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हानून और अम्मोनियों ने 1,000 किक्कार, 75,000 पौंड चांदी, अरम नहरेम और अरम्माका और सोबा को भेजी कि रथ और घुड़सवार किराए पर बुलाए। इस प्रकार उन्होंने 32,000 रथ किराए पर बुलाए और अम्मोनी अपने अपने नगर में से इकट्ठे होकर लड़ने को आए। पहला इतिहास 19:67। ये संधि यथार्थ में दुर्जय थी। परात महानद और भूमध्य सागर के बीच के क्षेत्र के निवासियों ने अम्मोनियों के साथ संधि की थी। कनान का पूर्वी और उत्तरी भाग सशस्त्र शत्रुओं से घिरा हुआ था, जो इसराइल के राज्य को कुचल डालने के लिए एकजुट हो गए थे।
इब्रियों ने अपने देश पर आक्रमण होने की प्रतीक्षा नहीं की। योआब के नेतृत्व में उन्होंने यर्दन को पार किया और अम्मोनी राजधानी की ओर बढ़े। जैसे जैसे इब्री कप्तान ने अपनी सेना को मैदान में उतारा, उसने उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहा, तू हियाव बांध और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगेगा वैसा करेगा। इतिहास 19:13। पहली मुठभेड़ में ही संघ की संयुक्त सेनाएं पराजित हो गईं, लेकिन वे संघर्ष में हार मानने को तैयार नहीं थे और अगले वर्ष युद्ध फिर आरंभ हो गया। अराम के राजा ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और एक विशाल सेना के साथ इसराइल को चुनौती दी।
यह जानते हुए कि इस संघर्ष के परिणाम पर बहुत कुछ निर्भर करता था, दाऊद व्यक्तिगत रूप से मैदान में उतरा और परमेश्वर के आशीर्वाद से संयुक्त सेना को इतनी बुरी तरह से पराजित किया कि लेबनान से फरात महानद तक अरामियों ने न केवल लड़ाई बंद कर दी वरन वह इसराइल का सहयोगी राष्ट्र बन गए। अम्मोनियों के विरुद्ध दाऊद ने युद्ध की गति बढ़ाई और उनके गढ़ गिर पड़े और संपूर्ण क्षेत्र दाऊद के अधीन हो गया। जो खतरे राष्ट्र को विनाश की चुनौती दे रहे थे, परमेश्वर की दया दृष्टि से वो साधन बने जिसने इसराइल अभूतपूर्व महानता को प्राप्त हुआ। अपने महत्वपूर्ण छुटकारों को स्मरण कर दाऊद गाता है, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो, धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी से बचाता है, इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वो अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है, वो अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। भजन संहिता 18 आयत 46 से 50। दाऊद के भजनों में आरंभ से अंत तक लोगों के मनों में यही विचार डाला गया कि यहोवा उनकी शक्ति और छुटकारा दिलाने वाला है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण दूर नहीं जाता, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। भजन संहिता 33 आयत 16-17। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। भजन संहिता 44 आयत 4-7। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। भजन संहिता 20 आयत 7। विस्तार में अब इसराइल का राज्य अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा के संपूर्ण होने तक पहुंच गया था। यही प्रतिज्ञा के बाद से मूसा को दोहराई गई थी। मिस्र के महानद से लेकर परात नामक महानद तक जितना देश है, मैंने तेरे वंश को दिया है। उत्पत्ति 15:18। इसराइल एक पराक्रमी राष्ट्र बन गया था और पड़ोसी देश उसका आदर करते थे और उससे डरते थे। अपने ही राज्य में दाऊद की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उसे लोगों का प्रेम और स्वामी भक्ति इतनी प्राप्त थी कि किसी भी युग में बहुत कम राजाओं को प्राप्त हुई होगी। उसने परमेश्वर का आदर किया था और परमेश्वर अब उसका सम्मान कर रहा था, लेकिन समृद्धि के बीच में खतरा छुपा बैठा था। अपनी सबसे महान बाहरी विजय के समय में वो सबसे बड़े खतरे में था, जिसमें उसे सबसे अधिक अपमानजनक पराजय मिली।